मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजों के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। सभी लोग अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचारों की एक निरंतर प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कोई भी विचार यदि हमारे जीवन में बहुत गहराई से उठे या कि बहुत गहराई तक चला जाए तो उसके द्वारा परिवर्तन अवश्य होता है। इसलिए हमने सोचा है पिछले दिनों से कि अब हम विचारों की निरंतर प्रक्रिया को शुरू करें, लेकिन कषाय पूर्वक अपने विषय और भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए तो हम निरंतर विचार करते हैं। वो विचार हमारे लिए अच्छा बनाने वाला विचार नहीं है। हमें अच्छा बनाने वाला विचार तो है कि हम संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता को समझें और निरंतर उस चीज़ का विचार करें और अपने अनुभव में उसे देखें। हमने पिछले दिनों अनुभव किया है कि यहाँ जो भी चीज़ें हमारे संपर्क में आती हैं उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वे नष्ट हो जाती हैं। हमारी कोशिश उन्हें शाश्वत बनाए रखने की, उन्हें संभालने की होती है, लेकिन इस प्रयास में हम हमेशा असफल होते हैं और ये हमारी असफलता या विफलता हमें दुख पहुंचाती है। इसलिए हमने अपने अनुभव से यह निर्णय ले लिया है कि अब हम चीज़ों की इस वास्तविकता को समझकर उनके नष्ट होने पर दुखी नहीं होंगे और वे जब तक हमारे पास हैं तब तक हम उनको लेकर इष्ट की कल्पना करके अपने राग की वजह से उनमें सुख नहीं मानेंगे। ना वे चीज़ें मुझे सुख दे पाती हैं, ना मुझे दुख देती हैं, वे तो अपने स्वभाव के अनुरूप उत्पन्न होती हैं और मरण को, नाश को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही मेरी अपनी ये देह भी है, जब जन्म लेती है तो मैं हर्षित होता हूँ, लेकिन एक दिन जब ये देह नष्ट होने लगती है तो मैं दुखी होता हूँ। यदि मैं इसके जन्म से सुखी होना छोड़ दूँ तो फिर इसके नाश होने पर मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसा हम अपने जीवन में स्वयं विचार करके ऐसा अनुभव उसका निचोड़ निकाल के रख लें और मौके पर जब आवश्यक लगे तो उसका उपयोग करें। फिर हमने देखा कि ठीक है, चीज़ें अगर नाशवान हैं तब भी मैं कुछ दिन इनके द्वारा इन चीज़ों को सुरक्षित रख लूँगा या अपनी सुरक्षा के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा कर लूँ तो शायद मेरा जीवन इनके द्वारा सुरक्षित हो सके। तो ऐसे बहुत से संबंध मैंने बनाए, चीज़ों से संबंध बनाए, व्यक्तियों से संबंध बनाए, लेकिन सारे संबंध हमें जरा भी सुरक्षा नहीं दे पाए। कोई अपना कितना भी सगा क्यों ना हो, वो मरण के समय ना हमारे साथ जा पाता है, ना हमें अपना जीवन दे पाता है, ना सांसें दे पाता है। हमें अंततः जैसे हम अकेले आते हैं वैसे ही हमें चले जाना पड़ता है। यहाँ कोई हमें शरणभूत नहीं है। ऐसा विचार करके जब कोई शरण नहीं है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, तो मैं फिर अपने आत्मा की शरण लूं या जिन्होंने अपने आत्मा की शरण प्राप्त कर ली उनकी शरण में जाऊं, वे मुझे बचा लेंगे ना? वे भी मुझे नहीं बचाएंगे। भगवान की शरण इसलिए नहीं लेनी है मुझे कि वे मुझे बचा लेंगे, वे मुझे संकल्प विकल्प के जाल से मुक्ति दिला देंगे, इसलिए मैं उनकी शरण ले रहा हूं। वे मुझे मृत्यु से बचा लेंगे, मृत्यु से तो भगवान भी तीर्थंकर भी आ जाए तो किसी को नहीं बचा सकते। इतना अवश्य है कि मृत्यु का जो संक्लेश मुझे खाए जा रहा है
वो उनकी शरण पाकर के मैं उस मृत्यु के दुख से बच सकता हूं, मैं यहां तक कि उस जन्म मरण की पीड़ा से पार हो सकता हूं, इसलिए मैं उनकी शरण ले रहा हूं। ऐसा हम लोगों ने पिछले दिन विचार किया था कि पंच परमेष्ठी की शरण है, और वो शरण भी इसलिए नहीं है कि वो मुझे मृत्यु से बचा लेगी, नहीं, वो जो जन्म और मरण से ही मुझे पार उतारने वाली शरण है और मुझे संसार के संकल्प विकल्प से बचा लेने वाली शरण है। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, हमारे विचार हमारे आचरण को सुदृढ़ बनाते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ बनाते हैं। विचार की शक्ति अचिंत है अगर देखा जाए तो। देखो सुकमाल जब तक अपने घर में रहे, सूर्य का प्रकाश चुभता था, रत्न दीपों के प्रकाश में रहते थे। एक दिन जब राजा आकर के उनको देखने आए थे तो माँ ने दीपक जलाया था, तो उस दीपक की रोशनी सहन नहीं कर पाए थे और आंख भीग गई थी उनकी। अगर बिस्तर में सरसों के दाने होते थे तो वो चुभ जाते थे। ये वो ही सुकुमार है, और जिनके लिए चावल खाने दिया गया तो कमल पत्र पर भिगोया गया, पकाया गया चावल इनको मुलायम वो खा पाते थे, लेकिन राजा के आने से उतना चावल अवेलेबल नहीं होने की वजह से कुछ अतिरिक्त चावल मिला दिया था, तो उसमें से बीन बीन करके खाते थे। तो देख करके कैसा लगता था कि कितना डेलिकेट पर्सनालिटी है, कितनी सुकमाल, कितनी सुकोमल ये व्यक्तित्व है। लेकिन वजह क्या थी? शरीर तो वज्रवश अब नाराज सहनन वाला था, शरीर में तो बहुत सामर्थ्य थी, लेकिन विचारों की सामर्थ्य नहीं बताई गई थी। माने हमेशा उनको उन सब विचारों से अलहदा रखा था जो विचार हमारे आत्मा के बल को प्रकट करते हैं। लेकिन नगर के उद्यान में आए हुए मुनि महाराज जो उनके स्वयं के पिता थे, उनके द्वारा जरा सा संबोधन सुनकर के, जरा सा उनकी वाणी सुनकर के, और वो जो आत्मशक्ति जागृत हुई, तब 3 दिन तक स्यालनी भक्षण करती रही, तब कहां गया उनका वो शरीर का सुकमालपना? सरसों के दाने चुभने वाले के भीतर भी क्या कोई इस तरह की सामर्थ हो सकती है? हो सकती है। वो एक बार यदि अपने मन को एक दिशा दे दे, वास्तविकता को जान ले, जिसको अपने स्वभाव का बोध हो जावे, इतनी ताकत है विचारों में। हम एक बगीचे में जाएं तो ये हमारे विचारों पर ही निर्भर है कि हम वहां क्या देखते हैं। अगर हम एक लकड़हारे की हैसियत से बगीचे में जाएंगे तो सिवाय लकड़ियों के ढेर के वहां कुछ नहीं दिखने वाला। अगर हम फल बेचने वाले की हैसियत से बगीचे में जाएंगे तो यही देखेंगे कि कितनी कीमत के फल इन वृक्षों पर हैं और कितने दिन तक इन्हें इसमें से उतार करके बेचा जा सकता है। हमारी अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है। और यदि हम एक संवेदनशील कवि की हैसियत से उसी जगह जाएं तो खिले हुए फूल और लदे हुए फल हमारे मन को कितनी शांति देंगे, यह भी हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है। एक बार एक बिल्ली गई थी विदेश यात्रा के लिए, हाँ बड़ी मजे की घटना है। तो उसकी और जो सहेलियां थी वो सब मिलने आई, उसको सी ऑफ करने आई। जैसे अपन में से कोई विदेश जाए तो सब सी ऑफ करने आते हैं कि एक्चुअली ये संसार ऐसा ही है, जहां हैं हम वहां सुख नजर नहीं आता, कहीं और वहां सुख नजर आता है। ये संसार की तासीर ही है, जो चीज प्राप्त हो जाती है वो सुख कर जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक जान पड़ती है, और प्राप्त होते ही वो जितनी दुखद मालूम पड़ती है शायद और कोई चीज उतनी दुखद नहीं होगी। यही संसार का स्वभाव है, लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आता, इस उदाहरण से समझ में आएगा। वो सब सहेलियों से मिलके और विदेश जाती है, और सहेलियां समझा देती हैं कि वहां पर जो विदेश की रानी साहिबा हैं उनके पास एक बहुत सुंदर सा मुकुट है, कहते हैं कि उसमें बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ है, कोहिनूर लगा हुआ है, देख करके आना, बहुत दुर्लभ है। उसने कहा देख के आऊंगी। गई वो अपने मालिक के साथ, तो मालिक सब घूमे तो जहां जहां घूमे बिल्ली भी वहां घूमी और वापस लौट के आई, तो ठीक उसी तरह एरोप्लेन से जैसे उतरने पर हम लोगों को लेने जाते हैं, वो भी विदेश से लौटने वाले को, फॉरेन रिटर्न। अभी यहां पर अगर आगरा के ताजमहल के पास कोई घूमने जाएगा तो हिंदुस्तानी कम दिखेंगे,
रहेंगे वहां पर, अपन को वो नहीं देखेंगे, अपन को विदेशी देखेंगे, उनमें अपना इंटरेस्ट, सारा इंटरेस्ट उनमें है। क्यों? वो विदेश से आए हुए, हमें जो प्राप्त है यहीं के यहीं अवेलेबल है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो अप्राप्त है उसमें इंटरेस्ट है। ये संसार का स्वभाव है, ये संसार की तासीर है। वो वापस लौटी तो सबने घेर लिया, कैसा लगा विदेश? बहुत सुंदर होगा, हम तो सोचते हैं कितना कितना देखा होगा तुमने, और वो देखा था तुमने कोहिनूर हीरा। उसने कहा सुनो और सब बातें छोड़ो, तुम सब बुद्धू हो, कुछ नहीं जानती, वहां सब कुछ है लेकिन वहां पर चूहे बहुत बड़े बड़े हैं। अब बिल्ली को कोहिनूर हीरे से क्या मतलब? बिल्ली जो देखना चाहेगी वो देखेगी, वो चूहे से ज्यादा कुछ नहीं देख सकती। हमारे अंदर भी यही चीज है, इस संसार के भौतिक सुखों में ही सुख देखने की नजर अगर हमारी है तो हम कितना भी संसार के बारे में विचार कर ले, हमें उसी में से सुख आता जान पड़ता है। क्या करें, हमारी अपनी आंख, हमारे अपने विचार, हमारी अपनी दृष्टि ही इस तरह की हो गई है कि जो वास्तविकता है हम उसे इग्नोर करते हैं। डिनाइल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से पलायन करके जो भ्रम है हम उसी में जीते हैं। संसार में दुख है लेकिन सबसे बड़ा दुख है इस बात का कि हम यहां सुख की कल्पना करके बैठे हुए हैं। संसार में सुख नहीं है, दुख है। ये सब बातें बस जान के हम जानते भी हैं लेकिन अगर हम गौर से देखें कि कारण क्या है यहां दुख का, तो यहां दुख का एक ही कारण है, दुख है यहां पर, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण इतना ही है कि मैं यहां सुख की कल्पना करता हूं, यही मुझे दुख देने वाली थी। बस संसार भावना भाने का मतलब यही है कि मैं इस संसार में सुख की कल्पना करना छोड़ दूं तो इस संसार में मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मुझे अगर ये भौतिक सुख से बड़ा कोई आत्म सुख है इस बात का ज्ञान हो जाए, इस बात की दृष्टि मेरे भीतर आ जाए, तो ये भौतिक सुख मुझे ना सुख पहुंचाएंगे, जब मुझे सुख नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे दुख भी नहीं पहुंचा सकते। यहां पर हम निरंतर अपने अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों को खोजते रहते हैं, प्रतिकूल संयोगों को दूर करने के लिए उद्यम करते हैं, अनुकूल संयोग जुटाने के लिए उद्यम करते हैं, इसके अलावा कुछ और करते हैं? सुबह से शाम तक हम सोचते हैं कि मेरे अनुकूल संयोग मिलेंगे तो मुझे सुख होगा, हम सोचते हैं कि मेरे प्रतिकूल जो संयोग हैं वो दूर हट जाएंगे तो मुझे सुख होगा। इतना ही मेरा अपना सोच है इस संसार में रहने की वजह से, और हम इसमें असफल होते हैं। ना हम प्रतिकूल संयोगों को हटा पाते हैं, ना अनुकूल संयोग को जुटा लेते हैं। कभी कभी जुटा भी लेते हैं तब भी हमें सुख नहीं मिलता। पुण्य दय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साथ, और जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। दो बातें इस संसार के बारे में हमेशा विचार में आनी चाहिए कि हम कौन होते हैं। इतने बड़े तीर्थंकर, उन्होंने सारे संसार को बहुत गौर से देखा है, उन्हें सुख नहीं मिला तो मुझे मिल सकता है क्या? ये भ्रम भर टूट जाए कि यहां पर सुख है, यहां पर जो हमने सुख की कल्पना कर रखी है अपने अनुकूल संयोग को जुटाने और प्रतिकूल संयोगों। दिन भर हम करते क्या है? कल मैं सोच रहा था कि शायद हम दिन भर यही तो करते हैं, मेरे अनुकूल क्या क्या है वो जुटाओ, दौड़ो और दौड़ के उस अनुकूलता को जुटा लो, और मेरे प्रतिकूल जो जो है उसमें एनर्जी वेस्ट करो, उसको हटाने में, उसको दूर करने में। लेकिन कभी किसी को भी इसमें सफलता मिली? पढ़ते जरूर है पूजा में कि प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, लेकिन हम उन प्रतिकूल संयोगों में भी समता नहीं रख पा रहे हैं, अनुकूल संयोगों के मिलने पर भी शांत नहीं रह पा रहे हैं। अनुकूल संयोग मुझे एक्साइट करते हैं और प्रतिकूल संयोग मुझे डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। संसार इतना ही है, अगर हम इस संसार को इस तरह गौर से देखें तो इस संसार की वास्तविकता मालूम पड़ने पर, अनुकूलता मिल जाने पर भी हम हर्ष नहीं करेंगे और प्रतिकूलता उपस्थित हो जाने पर भी हम विषाद नहीं करेंगे। अगर हम दोनों चीजों से जीत जाते हैं तो मानिए हम संसार से पार हो जाएंगे। संसार और कोई चीज नहीं है, संसार हमारे राग द्वेष से निर्मित होने वाली एक संयोगी पर्याय ही है जो हमने स्वयं अपने हाथ से निर्मित की है। हमने अपने राग द्वेष से इसको बनाया है, इसके मालिक, इसके कर्ता हम हैं।
ना इस सृष्टि का कोई करता है, ना इस सृष्टि का कोई स्वामी है, लेकिन अपने अपने संसार के हम स्वामी हैं, अपने अपने संसार के हम करता हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम सबके करता हैं और सबके स्वामी हैं। दूसरी चीज पर विचार करते हैं। पहली चीज तो ये कि यहां पर सुखाभास है, मैं उसे ही सुख मान लेता हूं, मेरी ये जो सुख की कल्पना है वही मुझे दुख देती है। जैसे कि एक मृग को मृग तृष्णा दुखी करती है, पानी का भ्रम उसे दौड़ दौड़ करके मरने के लिए प्रेरित करता है, इसी तरह से मुझे संसार में जो दुख है वे सुख जान पड़ते हैं, मैं उसमें सुख की कल्पना करके दौड़ता हूं और दौड़ दौड़ करके अपने मरण का उपाय करता हूं। यह पहली बात अगर समझ में आ जाए। और दूसरी चीज, यहां इस संसार को मैंने अपने लिए स्वयं बनाया है, किसी और ने मेरा संसार निर्मित नहीं किया है, ना किसी और के चरणों में बैठ करके मुझे संसार से पार होने का कोई उपाय करना है, मुझे किसी के चरणों में बैठ करके संसार से बचने का उपाय वो नहीं करेगा, मुझे स्वयं करना पड़ेगा। मैं तीर्थंकर के चरणों में बैठ जाऊं तो तीर्थंकर उठा करके मुझे अपने साथ मोक्ष में नहीं ले जाएंगे, मुझे अपना मोक्ष स्वयं तय करना पड़ेगा, अपने राग द्वेष को स्वयं हटाना पड़ेगा। मैं अपने राग द्वेष का कर्ता भोक्ता और स्वामी हूं, लेकिन बना फिरता हूं दुनिया भर का कर्ता भोक्ता और स्वामी। ये मेरा अपना दूसरा फॉल्ट है, ये मेरी अपनी दूसरी कमजोरी है। मुझे अब अपने राग द्वेष भर का कर्ता, अपने भावों का कर्ता अपने को मानना चाहिए, पर पदार्थों के कर्तित्व से मुक्त होना चाहिए। अपना कर्तित्व मानकर, अपना कर्तव्य मानकर के गृहस्थी में रहना चाहिए, लेकिन मैं अपने बेटे को पैदा करने वाला हूं, मैं अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा करने वाला हूं, मैं इस पूरे परिवार को चला रहा हूं, इस तरह के अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहंकार ही मेरे संसार को निर्मित करता है। और जब जब मैं इसमें असफल होता हूं तब संक्लेश करता हूं, अहंकार और संक्लेश दोनों ही चीजें मेरे संसार को बढ़ाने वाली हैं। जब जब मैं अपने अनुकूल सोचे हुए के अनुसार चीजों को पा लेता हूं तो अहंकार कर बैठता हूं, तब भी संसार बढ़ता है। और जब जब मैं अपने सोचे के विपरीत पाता हूं, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी और कुछ नहीं पा पाया, तो सिवाय विषाद के संक्लेश के कुछ भी नहीं होता। और अहंकार और संक्लेश दोनों ही संसार का ही नाम है, दूसरा नाम है संसार। तो फिर मैं यहां क्या करूं, अपना कर्तव्य मान के। अगर मैं विद्यार्थी हूं तो मेरा पढ़ने का कर्तव्य है, मैं पढ़ूं, लेकिन अगर मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाता हूं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ने का परिणाम ही बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर मैंने नहीं पढ़ा है या मैंने कम पढ़ा है तो मैं फेल हूं, तो उसके लिए तैयार रहूं ना। लेकिन यह तैयारी नहीं होती हमारी, हम तो अपने अनुकूल ही सारी चीजें चाहते हैं, उन चीजों को पाने का जो उपाय है उसके किए बिना भी हम चाहते हैं। और कर्ता बन करके, स्वामी बन करके हम कभी भी सुख नहीं पा सकते हैं। ये बात हमारे मन में आनी चाहिए, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ऐसा हमारे अंदर विचार आना चाहिए। जो भी यहां घटित होता है उसमें भला और बुरा, अगर मैं कर्तापना मान के चलता हूं तो ही भला और बुरा नजर आता है, नहीं तो नहीं आता है। एक बार क्या हुआ, एक श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृतियां दो हैं, तो कुछ लोग हैं जो कि ईश्वर को कर्ता मानते हैं, तो वो थे ईश्वर को कर्ता मानते थे, और एक कोई जैन व्यक्ति थे वो ईश्वर को कर्ता नहीं मानते थे। ईश्वर को मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वर को संसार का कर्ता मानना, ये तो बात कुछ जमती ही नहीं है। तो उन्होंने कई बार कहा कि हम तो नहीं मानते, तो वो जो व्यक्ति थे वो हमेशा कहते थे कि अरे आप ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं, जबकि हम तो, हमारा तो सारा काम ईश्वर ही कर देते हैं, हम उनकी प्रार्थना से ही सारी चीजें पा लेते हैं। अच्छा देखो आपको एक अनुभव हम अपने जीवन का बताएं। क्या अनुभव? तो यही कि हमारी एक बार दोनों किडनी फेल हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी किडनी तो अब ठीक ही नहीं हो सकती, दोनों फेल हो गई, लेकिन मेरे ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मेरी दोनों किडनी आज काम कर रही हैं और बिल्कुल ठीक है। देखिए ईश्वर की कृपा के बिना हुआ क्या? तो जो जैन व्यक्ति थे वो चुप रह गए, वो कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने फिर से छेड़ा कि अब तो आप मान लो कि यहां भगवान ही सब कुछ करता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब आपके भगवान को ठीक ही करना थी तो खराब ही काय को करें।
अगर भगवान ही सब कुछ करता है, वो ठीक भी करता तो खराब काहे को करता। भैया ऐसे ही तो अपन लोग सोचते हैं कि इनने हमारा ये बिगाड़ कर दिया, उनने हमारा वो बना दिया। ने भैया इनने बनाया, ने इनने बिगाड़ किया है, हमारे अपने कर्मों में ये निमित्त बन गए हैं। इतना अगर हमें ध्यान में आ जावे संसार में, ये तो एक उदाहरण था।
लेकिन ऐसा ही हमारे अपने जीवन में हम मान बैठते हैं, और जो हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि इससे कुछ प्राप्त होगा, वो हमारे अनुकूल हमें नजर आने लगता है, और ये हमारा हितैषी नहीं, ये हमारे प्रतिकूल है। इतना ही तो संसार है, यही तो हम करते रहते हैं। और तीसरी चीज, यहाँ इस संसार में सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा। अब सब प्रकार से इसमें कोई सार नहीं है। देख लो, जितने भी संबंध हमने बनाए हैं, जितने भी संयोग हमारे हैं, वो सब सार्थक हैं या निरर्थक हैं? हमें अभी तक वे संयोग जो हमारे अनुकूल हो जाते हैं, वे भी कितना सुख दे पाते हैं, और जो हमारे प्रतिकूल संयोग हैं, वे भी हमें कितना सुख दे पाते हैं? ये सब अगर हमें सुख मिलता होता, तब तो फिर आज तक हमें इसी संसार में मिल गया होता। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। सब विधि हम सोचते हैं कि धनवान हो जाएंगे, पद प्रतिष्ठा यश वैभव सब मिल जाएगा, तो हम सुखी हो जाएंगे इस संसार में। लेकिन ये भी कई बार मिले हैं, जिनको मिले उनसे पूछ के आओ कि तुम्हें मिला सुख, तो वो कह रहे हैं कि सब प्रकार से परख लो। सब विधि संसार असारा, सब प्रकार से निरर्थक ही है ये संसार। ये नहीं कह रहे हैं वो कि संसार से घृणा करने लगो, ये ध्यान रखना। संसार की वास्तविकता का ज्ञान कर लो, बस संसार से न राग करने की आवश्यकता है, न घृणा करने की आवश्यकता है, संसार का स्वरूप जानने की आवश्यकता भर है। यहां पर जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, तो इसके मायने ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है। हां बस इतना ही है, हमें लगता है जिसके पास धन संपत्ति नहीं है वो दुखी है, ठीक है माना हमने। लेकिन भैया इसके मायने ये मत समझ लेना कि जिसके पास धन संपत्ति है वो सुखी होगा, उससे पूछ कर क्या हो वो भी सुखी नहीं है, तो फिर मतलब क्या? जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है। हमने सब प्रकार से जान लिया, बस इतना ही। वो इसलिए कह रहे हैं कि सब प्रकार से हमने देख लिया है, यहां पर कहीं कोई सुख है नहीं। लगारा किंचित मात्र भी, भौतिक सुख हो सकता है, वो है खूब सारा है। पांचों इंद्रियों के विषय सामग्री प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वो सुख तो बहुत सारा है, यहां पर उस सुख की चर्चा नहीं है। वो जो स्वभाव भूत, वो जो आत्म सुख है, जिसके लिए मुझे दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, वो वाला सुख इस संसार में नहीं है। इसलिए सुख ना ही लगारा, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओ और अभी क्रॉस क्वेश्चन मन में आ जाए कि अरे इतना तो सुख है, भोजन करने का सुख क्या कमती सुख है, सोने का सुख क्या कमती सुख है, दुनिया भर की चीजें प्राप्त करने का सुख क्या कमती सुख है। लेकिन भैया यही सारा सुख अगर हमें सच्ची में सुख देता होता तो फिर हमें इसे छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन जिसमें से सुख मिलता है उसी में से अगले क्षण और दुख भी मिलने लगता है। मैं उस सुख को चाहता हूं जिसके पीछे कोई दुख ना हो, इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर वैसा वाला सुख नहीं है जिसके साथ साथ कभी दुख ना मिलता हो, यहां जरा भी सुख नहीं है। ये बात हमारे मन में अनुभव में आनी चाहिए। देखिए चर्चा में तो अपन कर रहे हैं, आपको भी ये सब चीजें दूसरे दूसरे ढंग से मालूम होंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पर अपन विचार करके देख रहे हैं, आपके साथ मैं भी विचार करके देख रहा हूं कि वास्तविकता क्या है। इन सब चीजों को अगर थोड़ा सा विचार करें तो अनुभव में ऐसा आना चाहिए। जिस दिन अनुभव में आ जाएगा बस उस दिन देखिएगा, फिर संसार में रहेंगे भी लेकिन संसार से अलिप्त होकर के रहना सीख लेंगे, और वही उतना ही करना हमारे लिए। रहना तो संसार में ही जाओगे, कहां ना संसार को कहीं उठा के फेंका जा सकता, ना अपने को वहां से कहीं दूसरी जगह, जहां भी जाओगे वहीं संसार है। बताइए चारों गतियों में घूम करके देख लें अगर तो भी संसार ही है, और वो संसार हमारे असल में भीतर है, ये जो बाहर दिखाई पड़ता है वो संसार तो संसार है ही, लेकिन मैंने इसे अपने लिए अपने भीतर निर्मित करके रखा है। मुझे वहां झांक के देखना चाहिए कि वो कैसे निर्मित हो गया है और मुझे उसमें सुख मिला आज तक कि नहीं उसको निर्मित करने में। मैंने राग द्वेष से अपना संसार बनाया, उस संसार में मुझे कोई सुख मिला वास्तव में? मैं कितनी कितनी बार राग के संबंध बनाता हूं सुख पाने के लिए, लेकिन वे राग के संबंध भी एक ना एक दिन मुझे दुख देने लगते हैं। देखो, मैं द्वेष के संबंध भी निर्मित करता हूं, वे तो मुझे हमेशा दुख देते ही हैं, लेकिन जो राग के संबंध हैं वो तो मुझे सुख देना चाहिए था, लेकिन वे भी ज्यादा मुझे सुख नहीं दे पाते। तो ऐसे संसार में मैं अनुभव करूं, अगर ऐसा अनुभव करेंगे हम तो फिर हमारे संबंधों में भी बड़ी निर्मलता और बड़ी पवित्रता आ जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, संसार भावना भाने वाला संसार में ढंग से जीना सीख लेता है, बस इतना ही। अभी संसार में रचपच करके उसमें सुख पाने की चेष्टा कर रहे थे या कि उसमें दुख मान रहे थे, लेकिन इस संसार में न सुख है न दुख है। मेरे अपने परिणामों की वजह से मैं यहां सुख और दुख पाता हूं, मेरे अपने मोह और अज्ञान की वजह से मैं यहां दुख पाता हूं। चारों गतियां मुझे दुख देती हों या ये संसार या संसार के लोग मुझे दुख देते हों, ऐसा नहीं है, ये मेरा भ्रम है। मैं अपने अज्ञान और मोह को अगर कम कर लूं तो मुझे इस संसार में, जैसे अनंत भगवान भी संसार में ही हैं लेकिन वे अपने आत्मा के सुख में लीन हैं, मुनि जन महा मुनि जो अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं वे भी इस संसार में रह करके उस आत्म सुख का स्वाद ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? संसार में तो दुख ही है। नहीं, संसार में दुख तब है जबकि मैं उस संसार में सुख मानने का भ्रम पाल लेता हूं, तब दुख है, और वैसे नहीं। मेरा ये अज्ञान, मेरा ये जो मोह है वो दुख का कारण है। ये अंततः मुझे अगर समझ में आ जावे फिर देखिएगा कि कैसे संसार के बीच रह करके भी हम प्रसन्न और स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं। हम राग द्वेष ना करें तो हम स्वस्थ ही हैं। जितनी देर को हम राग द्वेष छोड़ देते उतनी देर को हम स्वस्थ हैं, वरना तो हमारी हमेशा राग द्वेष में तबीयत खराब ही रहती है। देख लो, अपन कहते जरूर है कि तबीयत अच्छी है, तबीयत कहां अच्छी है? क्या तो राग कर रही हो, क्या द्वेष कर रही हो, तबीयत तो दो ही में बिगड़ी। हाँ, और वैसे रोगों को बहुत सारे रोग होंगे होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा रोग है, ये जो अज्ञानता है वो मुझे स्वस्थ नहीं होने देती। बस इतना समझ में आ जाए और फिर हम उपाय छोड़ दें अपने ही दुख के। हम उपाय करते हैं अपने दुख के, सुख का उपाय करने की आवश्यकता नहीं इस संसार में। इस संसार में दुख का उपाय न करें तो सुख तो हमारे आत्मा में अपने आप भरा पड़ा हुआ है। कैसे? एक सेठ जी को सुख और शांति की बहुत खोज थी। एक उदाहरण से और अपन बात समझ लें, इतना ही पर्याप्त है मेरे ख्याल से। आप घड़ी नहीं रख रहे हैं तो मेरे साथ आप तब भी मुझे मालूम तो पड़ ही जाता है कितने बज गए होंगे। 10:10 हो गए होंगे, हैं? हो गए, घड़ी रख दो आप, 5 और फिर समय हो जाएगा। तो एक उदाहरण से अपन समझने की कोशिश करें कि कैसे हम अपने दुख का उपाय करते हैं और कैसे हम अपने उस दुख का उपाय करना बंद कर देवे तो सुख हमें अपने आप अपने भीतर मिल जाए। देखो, एक प्रश्न भी करो तो करना भैया, हम इतना ही कह रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप 100% कर पाओगे कि नहीं, हम ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखते, क्योंकि अपेक्षा रखूंगा तो दुख ही मिलने वाला मुझे भी। हाँ, मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि अपन जब बैठे हैं तो अपन विचार करें और एक कदम तो रखें आगे कि हाँ ठीक बात समझ में आ जाए कि हम अपने दुख का उपाय नहीं करें तो हमको सुख वहीं के वहीं अवेलेबल हो सकता है जहां हम हैं वहां। एक सेठ जी को सुख और शांति की खोज थी। उनने सोचा कि अब यहां तो इस गांव में तो मिलेगी नहीं, इस शहर में नहीं मिलेगी, चलो कहीं और ढूंढ करके आते हैं, कहीं सुख और शांति मिलेगी। किसी से पूछेंगे कि भैया सुख शांति कहां मिलेगी, दूसरे गांव के लोगों से पूछेंगे। तो उनने जो जितने भी उनके पास हीरे जवाहरात बढ़िया बढ़िया थे वो एक पोटली में रखे और चले चले। तो गांव गांव में पूछते थे, भैया तुम्हें सुख और शांति है क्या, तुमने देखा कहीं उसको? कहते हमें तो आज तक नहीं मिली। तुम आगे के गांव में जाओ, वहां के लोग ज्यादा सुखी मालूम पड़ते हैं, शायद उनको मालूम हो, कुछ खबर हो कहां मिलती है, क्योंकि हर एक को ये लगता है कि आगे वाले गांव वाला सुखी।
तो आगे आगे गांव में पहुंचते चले गए, लेकिन सब यही जवाब देते थे कि भैया यहां नहीं है, यहां सुख शांति नहीं है, आप तो और आगे कहीं खोजो। अचानक जो है थके हारे सेठ जी ने सोचा कि किसी पेड़ के नीचे बैठे, तो एक पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां पर पहले से एक बाबा जी बैठे थे बड़े शांत। और सेठ जी ने सोचा कि ये बड़े शांत है, लगता है सुखी भी होंगे, और ये तो जगह जगह घूमते रहते हैं, दुनिया भर में घूमे, इनको सही पता हो, इनसे पूछ लेते कि आप तो बताओ कहां है सुख और शांति। पूछा उनसे कि सुख और शांति कहां पर है। अब बाबा जी तो बाबा जी पक्का, अच्छा बाबा जी वगैरह का ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, इनका कोई भरोसा हिसाब किताब नहीं, तो कब क्या कहेंगे, हमें अपने लिए भी कह रहा हूं आपसे, कब क्या करने की कुछ पता नहीं रहता है। तो क्या हुआ कि बाबा जी ने तो कुछ नहीं देखा और वो पूछे गए थे कि कहाँ सुख शांति मिलेगी, कुछ तो बताओ खबर अबर एड्रेस वेड्रेस नोट करवाओ, और बाबा जी ने तो
ये जो पोटली लिए थे सो पोटली उठाई और दौड़ लगा दी। अब सेठ जी बड़े मुश्किल में कि हम तो इनसे भले आदमी सोच रहे थे, इनको भला समझ रहे थे, ये तो पक्के चोर निकले और हमारी पोटली चुरा करके भाग रहे, अब ये पीछे पीछे भागे। सारे गांव की गलियों में से बाबा जी यहां से वहां पोटली हाथ में लिए और सारा हुजूम गांव के लोग भी आ गए, और वो व्यक्ति सेठ जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हांफ रहे हैं, परेशान, पसीने पसीने, और बाबा जी ने एक चक्कर सारे गांव का लगाया और फिर अपनी ज्यों की त्यों पोटली लाके उसी पेड़ के नीचे फिर बैठे शांत एकदम। बड़ा मुश्किल, सब पूरा गांव आ गया, सेठ जी भी आ गए, और सेठ जी कहने लगे कि बाबा जी हम तो आपको बहुत सीधा सच्चा समझ रहे थे, लेकिन हमें मिले आपको परेशान करने के लिए, इतना आपने हमें तंग किया, सब में इतना भटकवाया, क्या मतलब था आपका। बाबा जी बोले कि हमने बिल्कुल परेशान नहीं करो, ना हम तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं, तुम अपने संगे परेशानी को पाए धरे हो। अच्छा ये बताओ तुम मेरे पीछे भागे थे या पोटली के पीछे भागे। सेठ जी को समझ में आ गई, लेकिन अपनी जिंदगी निकल गई, अपन को समझ में आज तक नहीं आई कि अशांति का उपाय हम अपने साथ में लिए फिरते हैं और दूसरे से पूछते हैं कि मुझे शांति बताओ कहां पर मिलेगी, मुझे सुख बताओ कहां मिलेगा, वहीं मिलेगा वहीं, अगर हम उन सब चीजों से डिटैच हो जाएं, जिन चीजों में दुख है हम उनको छोड़ देवें, उनमें सुख मानने का भ्रम तोड़ देवें, तो वहीं के वहीं जहां हम बैठे हैं, जहां आप बैठे हुए हैं, वहीं पर सुख मिलने लगे, और कहीं कोई दूसरी जगह नहीं है, अबोड ऑफ ब्लेस नहीं है कहीं पर कि वहां जाएंगे मोक्ष में चले जाएंगे तो वहां सुख मिल जाएगा, अपनी कषायें लेकर के वहां भी जाएंगे तो वहां भी अपना संसार निर्मित कर लेंगे, जैसे एक इंद्रिय जीव सिद्ध शिला पर बैठे हैं वहां भी उनका संसार चलता रहता है, उनके राग द्वेष के परिणाम वहां भी चलते हैं। भैया अगर राग द्वेष के परिणाम जहां भी बैठ करके शांत हो जाएं तो समझना वहीं पर सुख मिल गया अपने लिए, इस संसार में इतना ही सुख है जितना कि हम राग द्वेष को कम कर देवें। आचार्य महाराज कहते हैं कि जितनी जितनी आकुलता घटती जाए और जितनी जितनी निराकुलता बढ़ती जाए उतना उतना मोक्ष का सुख इस संसार में भी है। बस इतना ही विचार करके हम इस संसार की आकुलता से बचें, उसे कम करें, और निराकुलता तो हमारा अपना स्वभाव है, उसे हम प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ मग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिव्य दर्शन करने वाला है। शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब ध्यान करते